नमस्कार भारत, 12 अक्टूबर शुक्रवार, मैं हूं दिनेश उप्रेती। अमेरिका समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों में हाहाकार, ट्रंप ने फेड को ठहराया कसूरवार।
आई थिंक द फेड इज फार टू स्ट्रिंजेंट एंड दे मेक इट अ मिस्टेक।
यौन उत्पीड़न के आरोपों से बढ़ी एमजे अकबर की मुश्किलें, विपक्ष बना रहा इस्तीफे का दबाव।
जितना स्पष्ट हो सकता है आज की परिस्थितियों में, उतना स्पष्ट बयान तो ये दो मिनिस्टर्स ने दे दिया है।
जयपुर में जीका वायरस से पीड़ितों की तादाद बढ़ी, पीड़ितों में कई दूसरे राज्यों के लोग भी।
हमने एक एक पेशेंट को जो पॉजिटिव केस आया है उसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। यदि वो बाहर भी चले गया तो संबंधित सरकार को सूचित कर दिया है कि उसको अपन एक जगह आइसोलेट कर दें।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सुनिए सर्वप्रिया सांगवान से। लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी अमेरिकी शेयर बाजारों में 2% तक की गिरावट रही। बुधवार को फरवरी के बाद से अमेरिका के शेयर बाजार में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस गिरावट के लिए अमेरिकी केंद्रीय बैंक के अड़ियल रुख को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्याज दरें बढ़ाने का बैंक का फैसला एक बड़ी भूल है। जानकारों का मानना है कि अमेरिका का चीन के साथ व्यापार युद्ध इसकी वजह है और इसकी वजह से एशिया और यूरोप के बाजारों में भी तेज गिरावट आई। अमरीकी शेयर बाजारों में मची हलचल ने भारतीय बाजारों को भी हिलाकर रख दिया। इस साल मई में अमरीकी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े निर्माताओं में शुमार रहे हार्वी वाइनस्टाइन को न्यूयॉर्क की एक अदालत में बलात्कार और यौन उत्पीड़न के कई मामलों में अभियुक्त बनाया गया था। न्यूयॉर्क के एक जज ने उनके खिलाफ 6 यौन उत्पीड़न के आरोपों में से एक को खारिज कर दिया है। ये मामला लूसिया इवांस से संबंधित है, जिन्होंने फिल्म निर्माता पर सेक्सुअल एक्ट करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था जब वह कॉलेज छात्रा थी और अभिनेत्री बनना चाहती थी। अभियोजन पक्ष का कहना है कि नई जानकारियों के मद्देनजर वे अभी कोर्ट को इस फैसले पर चुनौती नहीं दे सके। हार्वी वाइनस्टाइन के वकील का कहना है कि उनके क्लाइंट को बदनाम किया गया है और अब वे बाकी आरोपों को खारिज करने की अपील करेंगे। वहीं लूसिया इवांस की वकील का कहना है कि अभियोजन पक्ष के सरकारी वकील ने केस पर ठीक से काम नहीं किया। उन्होंने कहा, मैनहट्टन के सरकारी वकील ने लूसिया के दावों को खारिज कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वाइनस्टाइन बेकसूर हैं और ना ही इसका मतलब ये है कि लूसिया का यौन उत्पीड़न का आरोप गलत है। ये सिर्फ ये बताता है कि मैनहट्टन का डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का दफ्तर कैसा है और उसने मेरे क्लाइंट के केस पर ठीक से काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ मेरी क्लाइंट का इस्तेमाल किया है। जो सबूत उनके पास आज हैं वो महीनों से ही उनके पास थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लूसिया को अनावश्यक परेशान किया। लूसिया इवांस की वकील के शब्द। एक सहायता एजेंसी ने चेतावनी दी है कि कांगो में प्रत्येक सप्ताह नए इबोला मामलों की संख्या दोगुना हो गई है। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी ने कहा कि ज्यादातर नए मामले पूर्वी शहर बेनी में हैं, जहां असुरक्षित माहौल की वजह से पिछले कुछ हफ्तों में 2 बार इबोला कार्यक्रमों को निलंबित करना पड़ा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि उन्हें लगता है कि ये प्रकोप कम से कम 3 से 4 महीने तक टिकेगा। पीटर सलामा WHO में हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक हैं। उन्होंने कहा कि ये बीमारी पड़ोसी देशों में फैल सकती है, लेकिन अभी उनकी प्राथमिकता कांगो है। आने वाले दिनों में हम युगांडा और रवांडा में भी सभी मामलों की पुष्टि हो जाएगी, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि उन देशों में बहुत अच्छी तैयारी है और अगर वहाँ इबोला के मामलों की पुष्टि होती है तो हम उन सरकारों के साथ जल्द काम करेंगे। मैं वास्तव में कांगो के असुरक्षित क्षेत्रों में बढ़ते प्रकोप से अधिक चिंतित हूँ, क्योंकि युगांडा और रवांडा में प्राथमिक चिकित्सा सिस्टम काफी मजबूत हैं और तैयारी के स्तर पर काफी अच्छे हैं। WHO के पीटर सलामा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पिछले महीने दक्षिण कैरोलिना में हुई लड़ाकू विमान दुर्घटना के बाद अमरीकी सेना ने F-35 लड़ाकू विमानों को अपने पूरे बेड़े से हटा दिया है। जांचकर्ताओं को संदेह है कि इन विमानों की ईंधन ट्यूबों में समस्या है और अगले 2 दिनों में सभी विमानों का निरीक्षण करने की योजना है। F-35 को इसराइल समेत कई देशों को बेचा गया है। एक बीबीसी संवाददाता का कहना है कि दुनिया के सबसे महंगे हथियार कार्यक्रम के लिए यह एक शर्मनाक झटका है, लेकिन उनका कहना है कि F-35 दशकों से अमरीकी वायु शक्ति का केंद्र बिंदु रहा। ब्रिटेन में एक ट्रांसजेंडर कैदी ने 2 महिला कैदियों का यौन उत्पीड़न किया था और उससे पहले 2 महिलाओं का बलात्कार भी किया था। इस ट्रांसजेंडर कैदी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। 52 साल की कैरन वाइट ने पिछले साल वेस्ट यॉर्कशायर की एक महिला जेल में रिमांड के दौरान 2 महिलाओं पर हमला किया था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को दिनेश उप्रेती का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। दुनिया भर के शेयर बाजारों के लिए हर बड़ी बुरी या अच्छी खबर अमेरिका के रास्ते आती है, यानी कह सकते हैं कि अगर वॉल स्ट्रीट को छींक आती है तो जुकाम पूरी दुनिया के शेयर बाजारों को हो जाता है। कल पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में हाहाकार मचा। फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, जापान और भारत के शेयर बाजारों में जमकर बिकवाली हुई। इस उठापटक के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऊंची ब्याज दरों को कसूरवार ठहरा रहे हैं, तो कई जानकारों का मानना है कि ट्रंप का छेड़ा गया ट्रेड वॉर इस दहशत की असली वजह है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए सर्वप्रिया सांगवान से।
अमेरिका समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों में हाहाकार मचा है। गिरावट का ये दौर अमेरिका की वॉल स्ट्रीट से शुरू होता है, फिर इसकी मार से दुनिया का शायद ही कोई शेयर बाजार बचता हो, फिर चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस या जर्मनी, या फिर एशिया में चीन, जापान या भारत जैसी आर्थिक ताकतें। कल पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में जमकर बिकवाली हुई और क्योंकि गुरुवार को भी अमरीकी शेयर बाजारों में 2% तक गिरावट रही, ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि एशिया और यूरोप में भी इससे बच नहीं पाएंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस गिरावट के लिए अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के अड़ियल रुख को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्याज दरें बढ़ाने का फेडरल रिजर्व का फैसला एक बड़ी भूल है।
आई थिंक द फेड इज फार टू स्ट्रिंजेंट।
मुझे लगता है फेडरल बैंक बहुत सख्त है और वे गलती कर रहे हैं, ये सही नहीं है। इसके बावजूद हम अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन मेरी राय में ऐसा करना जरूरी नहीं है और मुझे लगता है कि मैं इस बारे में बैंक से बेहतर जानता हूँ, मेरा यकीन कीजिए। ये थे डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। लेकिन ये गिरावट राष्ट्रपति ट्रंप के लिए चिंता का सबब जरूर होगी, क्योंकि वो बार बार शेयर बाजारों के अच्छे प्रदर्शन को अपनी सरकार की सफलता से जोड़ते रहे हैं। फेडरल बैंक इस साल पहले ही 3 दरें बढ़ा चुका है और अधिकारियों ने और बढ़ाए जाने की चेतावनी दी है। बुधवार को अमेरिकी शेयर बाजार में आई गिरावट फरवरी के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। हालांकि अमेरिका का इतिहास देखा जाए तो ब्याज दरें अभी कम हैं, लेकिन ब्याज दरों के ज्यादा होने से कर्ज लेना मुश्किल होगा। कुछ जानकारों का कहना है कि इन दरों से कंपनियों के लाभ में भी कमी आएगी। जानकारों का मानना है कि अमेरिका का चीन के साथ व्यापार युद्ध इसकी वजह है और इसकी वजह से एशिया और यूरोप के बाजारों में भी तेज गिरावट आई। गुरुवार को अमेरिकी मीडिया में खबरें थीं कि ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अगले महीने मिलने की योजना बना रहे हैं, लेकिन बाद में न्यूज चैनल को दिए बयान में ट्रंप ने फिर से सख्त रुख अपना लिया। उन्होंने कहा कि चीन समझौता करना चाहता है, लेकिन उन्हें संदेश दे दिया गया है कि चीन अभी तैयार नहीं है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टिन लेगार्ड कहती हैं कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद सिर्फ उन देशों को ही नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो विवाद में सीधे तौर पर शामिल हैं, बल्कि बहुत से देश इसकी जद में आएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि व्यापार युद्ध या मुद्रा युद्ध की दिशा में नहीं बढ़ें। ये सभी हिस्सेदारों के लिए हानिकारक होगा और कई निर्दोष लोग भी इसका नुकसान उठाएंगे। सरकारी और निजी कर्ज को अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है। थोड़ा भी कुछ इधर उधर हुआ तो बढ़ रहे बाजारों में आर्थिक संकट आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टिन लेगार्ड के शब्द। अमरीकी शेयर बाजारों में मची हलचल ने भारतीय बाजारों को भी हिलाकर रख दिया और कल सेंसेक्स कारोबारी सत्र के दौरान 1,000 तक लुढ़क गया था और देखते ही देखते निवेशकों के 3,00,000 करोड़ रुपए साफ हो गए। हालांकि बाद में कुछ संभला और आखिरकार 760 की गिरावट के साथ बंद हुआ। कुछ यही हाल चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, हांगकांग का भी रहा और बाजारों में 3.5% की गिरावट दर्ज की गई।
रिपोर्ट सुनवा रही थी सर्वप्रिया सांगवान। भारत में मी टू अभियान ने ऐसा तूल पकड़ा है कि इसकी जद में कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। कई महिलाओं ने अपने साथ हुए कथित यौन उत्पीड़न के बारे में सोशल मीडिया पर बात की है और कई ने तो उन पुरुषों के नाम भी जाहिर किए हैं जिन पर आरोप लगे हैं। मुंबई से बीबीसी संवाददाता योगिता लिमिये।
वो बार बार मुझे अपनी क्लेविज की तस्वीरें भेजने के लिए कहते थे। मैं इससे बहुत ज्यादा असहज हो जाती थी। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कुछ हद तक चर्चित थे। मैं इसके परिणामों को लेकर के डर जाती थी। मैं भी मी टू।
मैं चली गई क्योंकि वो एक बड़े लेखक थे, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में घुसी उसने दरवाजा बंद कर दिया और मुझे छूने की कोशिश की। मैंने बहाना बनाया और किसी तरह से वहां से निकल गई। मैं भी मी टू।
मैंने एक वरिष्ठ संपादक का शोषण कई महीनों तक झेला। अगर मैं उनके भद्दे संदेशों का जवाब नहीं देती तो पूरा दिन उनका व्यवहार मेरे प्रति खराब रहता। वो मेरी रिपोर्टों को चलने ही नहीं देते। मैं भी मी टू।
पिछले कुछ दिनों में भारत की सैकड़ों महिलाओं ने अपने साथ हुए यौन शोषण के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा है और खुलकर अपनी भड़ास निकाली है। ये उन्हीं में से कुछ की कहानियां हैं। कुछ महिलाओं ने तो उन पुरुषों के नाम भी लिख दिए हैं जिन पर उन्होंने शोषण करने का आरोप लगाया है। कुछ घटनाएं सालों पहले हुई है और कई मामले दो दसियों साल पुराने हैं, लेकिन शायद भारत में महिलाओं के बोलने का समय अब आया है और यहाँ भी मी टू अभियान शुरू हो गया है। महिलाएं शोषण के बारे में अब खुलकर बात कर रही हैं। इसकी शुरुआत तनुश्री दत्ता से ही हुई है। इस पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री ने हाल ही में 10 साल पहले हुए अपने यौन उत्पीड़न के बारे में दोबारा बात की है।
I was shooting for a Bollywood song for a film 10 years ago.
10 साल पहले मैं बॉलीवुड के गीत पर फिल्मांकन कर रही थी और उस फिल्म के सेट पर मेरा शोषण हुआ। ये एक ऐसी घटना है जिसके बोझ के साथ मैं 10 साल तक रही हूँ। मैंने तब भी इस बारे में बात की थी, लेकिन मेरी बात किसी कहानी की तरह आई और किसी कहानी की तरह ही खत्म हो गई। और अब 10 साल बाद एक बार फिर हम इस बारे में बात कर रहे हैं।
इससे आपके जीवन पर क्या असर हुआ?
I loved dancing, I loved movies, I loved acting. I was just taken away from me. I had movie offers all.
मुझे डांस करना पसंद था, फिल्में पसंद थी, अभिनय करना पसंद था। ये सब मुझसे छीन लिया गया, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। इस दौरान मुझे कई फिल्मों के प्रस्ताव मिले, लेकिन जब भी कोई ऑफर मेरे पास आता तो मैं पसीना पसीना हो जाती। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता और मैं फिल्म ना करने का बहाना खोजने लगती।
तनुश्री दत्ता ने ये आरोप फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर पर लगाए हैं। उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उस समय सेट पर दर्जनों लोग थे और वो कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। लेकिन तनुश्री की कहानी के बाद और भी पुरुषों पर आरोप लगने शुरू हो गए। भारत में इस समय सबसे बड़ी खबर केंद्रीय राज्य मंत्री एमजे अकबर पर लगे आरोप हैं। एमजे अकबर पूर्व में चर्चित संपादक रहे हैं और अब कई महिला पत्रकार उन पर यौन उत्पीड़न के आरोपों के साथ सामने आई हैं। इनमें से कई आरोप दसियों साल पुराने हैं। अभी तक एमजे अकबर ने कोई टिप्पणी नहीं की है। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से जब इस बारे में सवाल किया गया तो वो बिना कुछ जवाब दिए ही आगे बढ़ गई। महिलाओं की सुरक्षा के मामले में भारत लगातार निचले पायदानों पर ही रहा है। यहाँ मुंबई की सड़क पर चलते हुए भी कई बार आपको लोग घूर कर देखने लगते हैं। ऐसे में भारत में रहते हुए महिलाओं की ऐसी कहानियां सुनना चौंकाता नहीं है। लेकिन इस बार अलग बात ये है कि न सिर्फ उत्पीड़न करने वाले पुरुषों के नाम लिए जा रहे हैं, बल्कि उन पर कुछ न कुछ कार्रवाइयां भी की जा रही है। अगर महिलाएं अपने मामलों को अदालत तक ले जाना चाहें तो उनके पास क्या कानूनी विकल्प है? हम मुंबई हाई कोर्ट के पास हैं। मैं यहां वकील ऋतुजा शिंदे से मिलने आई हूं, जिन्होंने ट्विटर पर महिलाओं को मदद देने की पेशकश की है। ऋतुजा जी, आपने महिलाओं को मदद की पेशकश करते हुए अपने पास आने के लिए कहा है, आपको किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है?
The response has been overwhelming, to be honest. There are a lot of brave women out there.
ईमानदारी से कहूँ तो रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। ऐसी कई बहादुर महिलाएं हैं जो कानूनी रास्ता अपनाना चाहती हैं। वो अपने आरोपों को सिर्फ सोशल मीडिया तक ही नहीं सीमित रखना चाहती, वो इन्हें आगे बढ़ाना चाहती हैं और अंजाम तक पहुँचाना चाहती हैं।
क्या भारत में कानून पर्याप्त सख्त है?
The problem with these laws, however, is that on paper they are perfect, but there is.
इन कानूनों की समस्या ये है कि कागज पर तो ये परफेक्ट हैं, लेकिन इन्हें प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया है।
अभी तक जितनी भी महिलाएं अपने आरोपों के साथ सामने आई हैं, वो सभी शहरों से हैं, क्योंकि यहाँ इसे लेकर कुछ जागरूकता है और उनकी पहुँच ऐसे प्लेटफॉर्मों तक है जहाँ वो अपनी कहानी साझा कर सकती हैं। देश के छोटे कस्बों और गाँवों में हालात शायद और ज्यादा खराब है और अभी तक वहां इस अभियान का कोई असर नहीं हुआ है।
मी टू अभियान के तहत ही यौन उत्पीड़न के आरोप केंद्र की मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर पर भी लगे हैं। अकबर इन दिनों विदेश दौरे पर हैं। एमजे अकबर की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और विपक्ष उनसे इस्तीफा मांग रहा है। इसी मसले पर बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पासा ने वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन से बात की और सबसे पहले पूछा कि अकबर के लिए स्थितियां कितनी मुश्किल हैं।
स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारामन थोड़ा बचते बचते पर बयान तो दिया है जिसमें साफ संकेत है कि एमजे अकबर को अपना बचाव खुद करना पड़ेगा। स्मृति ईरानी का काफी साफ बयान है, उन्होंने कहा कि हर महिला के लिए जहां काम करती है वो वर्क प्लेस हैज टू बी सेफ, किसी भी प्रकार का हैरेसमेंट या कुछ गलत काम ये कुछ नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स में आप अपने कॉलीग को एकदम तो वो नहीं कह सकते ना, वो स्मृति ईरानी को वो अथॉरिटी भी नहीं है ये कहने को कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। मेनका गांधी ने तो जरूर कहा कि प्रोब की जरूरत है, लेकिन ये लोग ने बयान बचते बचते दिया लेकिन अपना मैसेज अपना संकेत साफ साफ कर दिया। और निर्मला सीतारामन ने भी यही कहा कि हम लोग ये जो मी टू कैंपेन है उसके साथ हम एसोसिएट करते हैं, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे दो पार्टीज हैं, एक तो महिला है और एक जो का हैरासर जो है, तो आप अगर कहेंगे कि हम महिलाओं के तरफ हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप वो पुरुष जिन्होंने उनको सताया, जिन्होंने उनको बहुत तंग किया इतने सालों से, उनके खिलाफ हैं। तो मुझे लगता है कि जितना स्पष्ट हो सकता है आज के परिस्थितियों में उतना स्पष्ट बयान तो ये दो मिनिस्टर्स ने दे दिया है।
जी राधिका जी, इसके अलावा एक और जो तर्क दिया जा रहा है कई लोगों ने दिया है, उसमें उदित राज जी जैसे सांसद भी शामिल है, जिन्होंने कहा है कि इतने लंबे समय बाद लगाए गए आरोपों में वो गंभीरता नहीं रहती है, इसे आप कैसे देखती हैं?
10 साल के बाद आरोप लगाए हैं या 10 दिन के बाद, लेकिन ये जो है जितने हैं ये टेस्टिमोनियल्स जितने आए हैं, और मुझे लगता है कि वो जो अलग अलग महिलाओं ने दिया है, ऐसे नहीं कि वो उन्होंने इकट्ठा होके एक कॉन्स्पिरसी रचाया हो एमजे अकबर के खिलाफ और साथ मिलके किया हो। आरोप आरोप है, आरोप गंभीर है, गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
संभावना जताई जा रही है कि एमजे अकबर का इस्तीफा भी हो सकता है, तो अगर उनका इस्तीफा होता है तो क्या इसे भारत में मीटू अभियान की जीत के तौर पर देखा जाएगा और क्या ये माना जाएगा कि अब महिलाओं के लिए हालात थोड़े बेहतर हो रहे हैं?
खाली एमजे अकबर की इस्तीफा ही जीत नहीं माना जा सकता, हालांकि वो जीत तो होगा ही होगा, लेकिन एक अभियान शुरू हुआ है और ये अभियान से मैं उम्मीद रखती हूँ कि जो ऑफिसेज हैं महिलाओं के लिए वो और सुरक्षित हों, जो विशाखा गाइडलाइंस हैं वो और सीरियसली इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो एक तरह से मैं कह सकती हूँ ये वेकअप कॉल है।
ये बीबीसी हिंदी है और आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत। अब से कुछ ही देर बाद हम जानेंगे कि दिल्ली से छपे अखबारों की सुर्खियाँ क्या हैं, लेकिन पहले चलते हैं जयपुर। जयपुर में जीका वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। पीड़ितों में कई दूसरे राज्यों से यहां आए लोग भी शामिल हैं। ऐसे में जीका वायरस को दूसरे राज्यों में फैलने से रोकना प्रशासन के लिए एक चुनौती है। सुनिए बीबीसी संवाददाता जुबेर अहमद की ये ग्राउंड रिपोर्ट।
मैं इसमें शासन पार्क के लालबाग चौक पे हूँ। प्रशासन की तरफ से कोशिश हो रही है कि लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करें और उनको जीका वायरस के बारे में जानकारी दें, तो ये आशा कर रहे हैं कि कम से कम 100 लोग यहाँ पर आ जाएं ताकि ये अपना कार्यक्रम शुरू करें और लोगों को जीका वायरस की जानकारी दे सकें।
ये पार्क प्रशासन का एक तरह से वॉर रूम है जहाँ से जीका वायरस से मुकाबला किया जा रहा है। यहाँ सुबह 200 से अधिक डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी आते हैं और जीका वायरस से पीड़ित मोहल्लों के लिए रवाना हो जाते हैं।
मौलवी साहब कृपया इधर आओ। मौलवी साहब इस मंच पर पधारे। मौलवी साहब धन्यवाद। मौलवी साहब आपने हमारे आग्रह स्वीकार किया।
65,000 घरों वाली इस बस्ती में मुस्लिम आबादी काफी है, इसलिए अधिकतर पीड़ित मुस्लिम हैं। प्रशासन ने यहाँ उन मौलवियों को बुलाया है जो मस्जिदों और मदरसों में पढ़ाते हैं और जिनसे ये आशा की जाती है कि वो जीका के बारे में अपने लोगों को जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ आमंत्रित दूसरे मजहब के भी लोग हैं।
मेरा नाम जुबैर अहमद है, मैं बीबीसी दिल्ली से आया हूँ। आप अपना नाम बताइए।
मोहम्मद इकबाल नाम मेरा।
तो ये यहाँ जो अभी मीटिंग आप बुलाया गया है तो इसका मकसद क्या कह के बुलाया
गया? हमें तो ये कह के बुलाया गया, अब ये वायरस फैल रहा है, इसके बीमारी के बारे में कलेक्टर साहब आ रहे हैं तो उसके लिए वातावरण को करेंगे, बस इतना कह करके हमें यहाँ बुलाया।
आपका नाम?
देवेंद्र कुमार नाम से मेरा। और हमको यहाँ पर इसलिए बुलाया कि मतलब आप जो जीका वायरस फैल रहा है उससे बीमारी से जो लक्षण है उसके बारे में बताया जाएगा।
अब तक 65,000 परिवारों में से 41,000 घरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। 600 से अधिक ब्लड सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें 150 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। जीका वायरस से पीड़ित अब तक 32 लोगों में कई बिहार और दूसरे राज्यों से आकर बसे लोग हैं, जिससे जीका वायरस के दूसरे राज्यों में फैलने का भी खतरा है। जयपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पुरुषोत्तम शर्मा कहते हैं, दूसरे राज्यों को सारी जानकारी दी जा रही है।
हमने एक एक पेशेंट को जो पॉजिटिव केस आया है उसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। यदि वो बाहर भी चले गया तो हमने संबंधित सरकार को सूचित कर दिया है कि उसके घर के अंदर उसको अपन एक जगह आइसोलेट कर दें।
केंद्रीय सरकार ने भी स्वास्थ्य मंत्रालय में एक कंट्रोल रूम बनाया है, जहां से हर राज्य को जीका संबंधित जानकारी दी जा रही है। जुबैर अहमद, BBC जयपुर।
और अब अखबारों की समीक्षा। सर्वप्रिया सांगवान अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर्वप्रिया, क्या कहते हैं आज के अखबार?
दिनेश, जो मीटू अभियान जो सोशल मीडिया पर इतना तूल पकड़ रहा है और अखबारों में रोज़ कोई ना कोई सुर्खियां आ रही हैं, उसमें नवभारत टाइम्स ने छापा है कि जो मीटू अभियान है उसके समर्थन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी आ गया है। दरअसल संघ के सहसर कार्यवाह दत्तात्रेय हुसबोले ने फेसबुक की भारत में पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अखी दास के एक पोस्ट को शेयर किया है। इस पोस्ट में अखी ने लिखा है कि अपने अत्याचार की कहानी बताने वाली महिला पत्रकार के समर्थन के लिए आपको मीटू के अभियान की जरूरत नहीं है और महिला होने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ संवेदनशील होने की जरूरत है। और हुसबोले ने इस पोस्ट के स्क्रीनशॉट को ट्वीट करते हुए लिखा है कि अखी ने वही व्यक्त किया जो वह महसूस करते हैं। इसके अलावा जब एमजे अकबर के इस्तीफे के ऊपर निर्मला सीतारमन से भी पूछा गया तो उन्होंने उन पर तो कुछ बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि वो महिलाओं के साहस का समर्थन करती हैं। उमा भारती ने भी इसे समर्थन दिया है। मेनका गांधी भी ये कह चुकी हैं कि इस तरीके से इतने सारे हस्तियों के नाम आना बहुत ही गंभीर बात है। और इसके अलावा एक और, जो अब छत्तीसगढ़ के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं हमेशा एक CD वगैरह की जो बातें हैं कि CD लीक हो जाएगी, उस तरीके की ब्लैकमेलिंग और सब सामने चीज़ें आने लगती है। छत्तीसगढ़ की सियासत में CD क्यों खास किरदार है, अब इसी के ऊपर एक रिपोर्ट आई है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर हड़कंप मचा है CD को लेकर, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ बड़े नेताओं के CD है, वो चर्चा है, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है टिकट लेने के लिए। और ये सब इससे पहले भी एक CD के आरोप में एक पत्रकार को भी छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार किया जा चुका है।
कई गिरफ्तारियां हुई थी
जी। इसके अलावा जो दसों ने फिर से सफाई दी है कि जो रफाल डील के ऊपर कि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था कि वो रिलायंस को ही इसके लिए चूज़ करें।
तो एक तरफ आरोप लग रहे हैं और दूसरी तरफ उस पर सफाई आ रही है। शुक्रिया सर्वप्रिया। भारत प्रशासित कश्मीर में अलगाववादियों की निकाय चुनावों के बहिष्कार के आह्वान के बावजूद दक्षिण कश्मीर में 50 महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं। इन महिला प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार आसान नहीं था, इन चुनौतियों से वो कैसे निपटी, सुनिए श्रीनगर से माजिद जहांगीर की इस रिपोर्ट में।
नहीं नहीं, मैंने कैंपेनिंग नहीं, ये पब्लिक रैली नहीं की, मैं डोर पर डोर गई हूँ, मतलब अपने वार्ड में भी और दूसरों के वार्ड में भी मैं गई हूँ।
ये थी रोमी सारफीक जो दक्षिणी कश्मीर में BJP टिकट पर नकिया चुनाव लड़ रही हैं। उनसे मुलाकात के दौरान मैंने देखा कि उनके घर पर कई सारे कार्यकर्ता आए हुए थे जिनके साथ वो मौजूदा चुनाव पर चर्चा कर रही थी।
मैंने ये सोच के नॉमिनेशन भरा कि नहीं, ना रोड्स है, ना गली कोचे है, ना किसी के, एक गरीब जो पड़ा हुआ है ना उसका कुछ भी सहारा, पिछले गवर्नमेंट ने यहाँ कुछ भी नहीं किया है, मुझे किसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा।
जम्मू कश्मीर में 13 वर्षों के बाद नकिया चुनाव एक ऐसे समय में हो रहे हैं जब कश्मीर के हालात बीते 3 वर्षों से अशांत हैं। जम्मू कश्मीर में इन नकिया चुनावों का पहला चरण 8 अक्टूबर को हो चुका है। कोई भी उम्मीदवार कश्मीर में अपना चुनाव प्रचार खुलकर नहीं कर पाया है। इन चुनावों के लिए जम्मू कश्मीर में 2,990 उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे हालात में जो महिलाएं दक्षिणी कश्मीर से चुनाव लड़ रही हैं उनके लिए लोगों से मिलना, चुनाव मुहिम का प्रचार करना या वोट मांगना कोई आसान काम नहीं रहा है। कश्मीर के अलगाववादियों ने आम लोगों से इन चुनावों का बहिष्कार करने की अपील की है। अधिकारियों के मुताबिक दक्षिणी कश्मीर के 4 जिलों में कुल 50 महिलाएं इन चुनावों में भाग ले रही हैं। दक्षिणी कश्मीर के जिला अनंतनाग के बिजब्याड़ा में कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ने वाली एक उम्मीदवार, जिन्हें निर्विरोधी तौर पर कामयाब करार दिया गया है, ने बताया कि उन्होंने चुनावी मुहिम को रात के दौरान चलाया।
हुकूमत ने कहा कि मौसम बहुत ही साजगार है, हम रात को निकले, हम और टाइम निकले हैं हमेशा, कैंपेन चलाने के लिए, जिनमें हम कभी नहीं निकले।
एक दूसरी निर्दलीय उम्मीदवार ने बताया कि उन्होंने टेलीफोन पर अपनी चुनावी मुहिम को चलाया है। 16 अक्टूबर को इन चुनावों का आखिरी चरण है और 20 अक्टूबर को इन चुनावों के नतीजे सामने आएंगे। माजिद जहांगीर, BBC, श्रीनगर।
अपने बच्चों की परवाह किसे नहीं होती, लेकिन ये परवाह कई बार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि नुकसानदायक साबित हो सकती है। अंग्रेज़ी में इसे हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहते हैं। क्या होती है ये हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग और इसके नुकसान क्या हैं? सुनिए गुरप्रीत सैनी की रिपोर्ट।
लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने गाने की जो अभी लाइनें सुनी, आसान भाषा में समझाया जाए तो यही है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। जब आप अपने बच्चे की ज़रूरत से ज़्यादा परवाह करें और हर वक्त उसके आसपास मंडराने लगें। एजुकेशन एक्सपर्ट पूर्णिमा झा इसे यूं समझाती हैं।
तो हेलीकॉप्टर जिस तरह से कि आप जिधर भी जा रहे हो, एक्चुअली हेलीकॉप्टर आपको फॉलो कर सकता है। अभी जब पेरेंटिंग उसका स्टाइल वही हो जाता है ना, कि आपके बच्चे जहाँ जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और आप हर चीज को उनको इतना ज्यादा फॉलो कर रहे हो, यू बिकम लाइक अ शैडो। सो इट्स लाइक दैट कि आपके बच्चे जो भी कर रहे हैं उसमें आपका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है, उसको हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहते हैं।
हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग टर्म का पहली बार इस्तेमाल 1969 में लेखक डॉक्टर हेम गिनॉट ने अपनी किताब पेरेंट एंड टीनेजर्स में किया था। 2011 में इस टर्म को डिक्शनरी में शामिल किया गया। जानकारों के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के कुछ नुकसान हो सकते हैं, जैसे बच्चे का आत्मविश्वास डगमगाएगा, बच्चा डरपोक हो जाएगा, फैसला लेने की ताकत कमजोर हो जाएगी, नया सीखने की क्षमता कम हो जाएगी, भावनात्मक तौर पर कमजोर होगा, अचानक हुई घटनाओं के लिए बच्चा तैयार नहीं रहेगा। गुड़गांव में रहने वाली अलका सिंगल मदर है, वो इसकी ये वजह बताती हैं।
रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ बहुत बड़ा होता है, तो हम वर्स्ट बातें सोच लेते हैं मन में, और बच्चे को वो फ्रीडम देने में हमें वक्त लगता है।
हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के बारे में आगाह करते हुए पूर्णिमा झा संस्कृत की एक लाइन कहती हैं, अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी किसी भी बात की अति नुकसानदायक है।
और अब वक्त है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ सुमिरन प्रीत कौर, और शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। आज हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। पहला मुकाबला हुआ था राजकोट में, जिसे भारत ने अपने नाम किया। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली का कहना है कि उन्हें पता है कि इस टेस्ट मैच के साथ वेस्टइंडीज कम बैक करने की कोशिश करेगी।
Well, obviously, they're going to try and, you know, come back strong and come hard at us in this game because it's only a two-match series.
हमें पता है कि वेस्टइंडीज कम बैक करने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि दो ही टेस्ट मैच हैं। एक मैच हम जीत चुके हैं, तो जाहिर है वो अपना 100% देंगे। हमें पता है वो वापस आना चाहेंगे और हम भी अच्छा खेलेंगे।
तो आज हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच, और अब बात करते हैं उस टेस्ट मैच की जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच हुआ। दुबई में खेला गया पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ये मुकाबला ड्रॉ रहा। अब बात हॉकी की। मलेशिया में हो रहे सुल्तान ऑफ जौहर कप में आज इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम का मुकाबला होगा ग्रेट ब्रिटेन से। खेल की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
और चलते चलते मुख्य समाचार सरोप्रिया सांगवान से।
BBC समाचार। लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी अमेरिकी शेयर बाजारों में 2% तक की गिरावट रही। बुधवार को फरवरी के बाद से अमेरिका के शेयर बाजार में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस गिरावट के लिए अमेरिकी केंद्रीय बैंक के अड़ियल रुख को जिम्मेदार ठहराया है। इस साल मई में अमरीकी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े निर्माताओं में शुमार रहे हार्वी वाइनस्टाइन को न्यूयॉर्क की एक अदालत में बलात्कार और यौन उत्पीड़न की कई मामलों में अभियुक्त बनाया गया था। न्यूयॉर्क के एक जज ने उनके खिलाफ 6 यौन उत्पीड़न के आरोपों में से एक को खारिज कर दिया है। एक सहायता एजेंसी ने चेतावनी दी है कि कांगो में प्रत्येक सप्ताह नए इबोला मामलों की संख्या दोगुना हो गई है। पिछले महीने दक्षिण कैरोलिना में हुई लड़ाकू विमान दुर्घटना के बाद अमरीकी सेना ने F-35 लड़ाकू विमानों को अपने पूरे बेड़े से हटा दिया है। जांचकर्ताओं को संदेह है कि इन विमानों की ईंधन ट्यूबों में समस्या है, और अगले 2 दिनों में सभी विमानों का निरीक्षण करने की योजना है। ब्रिटेन में एक ट्रांसजेंडर कैदी ने 2 महिला कैदियों का यौन उत्पीड़न किया था, और उससे पहले 2 महिलाओं का बलात्कार, उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई है।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन किया देवाशीष कुमार ने। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम के वक्त 7:30 बजे होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com का पन्ना। दिनेश उप्रेती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।